Great Devya, Om Namah Siddhevya, Om Namah Siddhevya, Om Shuddhatmane Namah, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vajjayanam, Namo Loe Sauvasahunam, Tihuvana Sirase Harahe, Bhavabhaya Gabhadunigade Panam, Siddhe Jeevathanas, Samalina Gunachuliyam Ocham. यह श्री धवला टीका है जो श्री वीरसेन आचार्य ने रचित की है। यह षटखंडागम ग्रंथ की टीका है। षटखंडागम के कर्ता है भूतबली और पुष्पदंत आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की थी, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब जो छठी पुस्तक है चूलिका, उसमें हमारी द्वितीय चूलिका प्रारंभ हो गई है। पहली चूलिका प्रकृति समुत्कीर्तन, यानी प्रकृतियों के बारे में वहाँ वर्णन किया है, मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियों के नाम बताए थे। अब यहाँ स्थान समुत्कीर्तन बता रहे हैं। तो स्थान यानी अभी जैसे अभी यहाँ बंद की अपेक्षा पहले लेते हैं, तो एक साथ यानी कितने प्रकृतियों का बंद होता है, अलग अलग जो है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी वेदिनी वगैरह वगैरह, अलग अलग जो मूल प्रकृतियां हैं उनकी जो उत्तर प्रकृतियां हैं, तो संख्या की अपेक्षा उसमें जो अलग अलग जो वेरिएशंस है उसको यहाँ स्थान कहा है। जैसे ज्ञानावरण की पांचों ही प्रकृतियां बनती है हर समय कि जब तक दसवें के अंत समय, क्योंकि वहां विच्युति हो जाती है, तो हर समय पांचों ही प्रकृतियां बनती है, तो हम कहेंगे पांच प्रकृतियों का एक ही स्थान है। पहले गुणस्थान से लेकर दसवें के अंत तक सभी जीव पांचों ही ज्ञानावरण बांधते हैं, तो ज्ञानावरण का एक स्थान है कहेंगे। ये बात अपनी कल हुई थी। दर्शनावरण की नौ प्रकृतियां हैं, तो पहले और दूसरे गुणस्थान में नौ के नौ प्रकृतियां बनती है हर समय, जागृत अवस्था हो या नींद वाली अवस्था हो। उदय अलग अलग है, जागृत अवस्था में पांच वो निद्रा वाले कर्मों का कोई उदय नहीं है, फिर भी बंद देखने जावे तो निरंतर नौ के नौ दर्शनावरण मिथ्यात्व और सासादन वालों को बनती है, तो वहां कहेंगे ये नौ प्रकृति का एक स्थान है। बंद की बात चल रही, तो दूसरे के बाद यानी तीसरे चौथे और आगे के गुणस्थानों में दर्शनावरण की छह प्रकृतियां बंदेगी। तीन नहीं बंदेगी, छह बंदेगी। कौन सी तीन नहीं बंदेगी मंजू भाई? हाँ, ध्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा और प्रचला प्रचला नहीं बंदेगी, आगे की बंदेगी। तो ये तीसरा गुणस्थान, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा और आठवें के पहले भाग, वहां तक तो छह प्रकृतियां बनती है। तो दर्शनावरण की वो छह प्रकृतियों के बंधने वाला वो दूसरा स्थान है, यानी दर्शनावरण में तीन स्थान बताएंगे। नौ प्रकृतियों का बंधने वाला एक स्थान, छह प्रकृतियों का द्वितीय स्थान जो तीसरे गुणस्थान के आठवें के पहले भाग तक है, और फिर उसके बाद चार प्रकृतियां बंधेगी, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। तो चार प्रकृतियों के बंध वाला ये तीसरा स्थान, ऐसे तीन स्थान है। यहाँ तो संख्या देखनी है, बराबर। इसकी तो बात हो गई ज्ञानावरण की और दर्शनावरण की। उसके बाद हमने वेदनीय की देखी थी, तो वेदनीय का हमेशा एक का बंध होगा, संख्या देखनी है, कौन सा बंध होगा वो नहीं देखना यहाँ, क्योंकि दोनों एक साथ तो बनते नहीं है। साता वेदनीय बंधेगी या असाता वेदनीय बंधेगी, संख्या कितनी है? एक बंधेगा। तो एक कहाँ से कहाँ तक बनता है? तो मिथ्यात्व तो गुणस्थान से लेकर तेरहवा जो संयोग केवली गुणस्थान है वहां तक वेदनीय का बंध है, और एक ही प्रकृति बनती है। तो हम कहेंगे एक का स्थान है। वैसे हमें मालूम है कि असाता वेदनीय छठे तक बनती है, यानी छठे गुण स्थान तक दो ऑप्शन है, या तो साता वेदनीय बनेगी या असाता वेदनीय। फिर भी यहाँ संख्या की अपेक्षा बताएंगे तो सबको इकट्ठा करके पहले से तेरहवें तक एक ही स्थान है ऐसा कहेंगे। छठे तक तो दो में से एक बनेगी, सातवें के बाद तो मात्र असाता साता वेदनीय ही बनेगी, परंतु स्थान तो एक का ही रहे ना उसमें, इस तरह से। अब यहाँ मोहनीय की बात हमने शुरू की थी कल, तो मोहनीय में तो हम देखेंगे कि मोहनीय में कल हमने पढ़ा कि दस स्थान है, बंद के दस अलग अलग स्थान है, तो उसको फिर पढ़ते हैं। सूत्र हमने कल पढ़ा था, उसका अर्थ वाला जो सूत्र है 89 पेज पर, उसको फिर दोबारा पढ़ते हैं। हाँ वही पढ़ रहे, 88 पर पढ़ना है। अच्छा 88 पेज पर नीचे का पैराग्राफ जो है, दस स्थान यानी कितने कितने वाला स्थान है, वहां तो संख्या बताएंगे और उन संख्या में प्रकृतियां कौन सी, वो अभी अगले सूत्र में पढ़ेंगे। तो ये जो 20 नंबर का सूत्र हमने कल पढ़ा था, उसको दोबारा पढ़ेंगे नीचे अर्थ में। मोहनीय कर्म के 10 बंध स्थान है। मोहनीय कर्म की प्रकृतियां कितनी है कल हमने देखी थी, 28 है। दर्शन मोहनीय की 3 है और चारित्र मोहनीय की 25 है। तो यहाँ बंध की बात चल रही है, तो दर्शन मोहनीय की बंधने वाली कितनी है, एक ही है, मिथ्यात्व प्रकृति। सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का बंध नहीं होता किसी को, तो ये एक है। और चारित्र मोहनीय की 25 है, तो 26 में से हमको देखना है, परंतु निरंतर 26 की 26 बनती ही नहीं है। ऑप्शन कहाँ है, 3 वेद में से एक वेद बंधेगा, हास्य रति बंधेगी या शोक रति बंधेगी, यानी 3 में से एक, और यहाँ 4 में से 2, यानी यहाँ 2 निकले यहाँ 2 निकले, यानी कितने रह गए बंधने योग्य, 22। तो मिथ्यात्व अवस्था में 22 का बंध होगा, तो वो एक बंध स्थान कहलाएगा, 22 प्रकृतियों का बंध स्थान। हमने कल ये भी देखा था कि ये जो मोहनीय कर्म है, जब तक विच्छित्ति नहीं होती है तब तक निरंतर बंधने वाली प्रकृतियां कौन सी है, तो मिथ्यात्व एक है, 16 कषाय, यानी अनंतानुबंधी की 4, अप्रत्याख्यान 4, प्रत्याख्यान 4 और संज्वलन 4, मिथ्यात्व 16 कषाय और भय जुगुप्सा। ये जो 19 प्रकृतियां हैं वो ध्रुवबंधी कहलाती है, निरंतर बनती रहती है। जैसे क्रोध के चारों का उदय हो, अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान संज्वलन क्रोध सबका एक साथ उदय होता है मिथ्यात्व अवस्था में, परंतु बंध 16 की 16 का होता है। उदय क्रोध का होवे तो भी क्रोध मान माया लोभ सभी बनते हैं। उदय लोभ यानी जीव परिणाम लोभ का करे, क्रोध का करे, मान का करे या माया का करे, उसको सभी चारों ही चारों कषाय और ये 4 चौकड़ी वाले यानी ऐसे 16 बनते ही है। तो मिथ्यात्व 16 कषाय और भय जुगुप्सा ये 19 तो फिक्स है बंधने वाली। ऑप्शनल कौन सी है, 3 वेद में से एक वेद बंधेगा एट ए टाइम, ये मिथ्यात्व की बात चल रही है, 3 में से एक बंधेगा। हाँ और जो युगल है, हास्य रति बंधेगी या शोक रति बंधेगी, हास्य बंधेगा तो उसके साथ रति ही बनता है, इसलिए उसको एक साथ ही ले लेना। ऐसा नहीं होगा कि हास्य और शोक, ऐसा कॉम्बिनेशन कभी नहीं होगा, हास्य रति या शोक रति। तो पहले 19, एक वेद और एक युगल, 19 और 3 22, 22 प्रकृतियों का बंध स्थान होगा मिथ्यात्व अवस्था में। दूसरे गुणस्थान वाले को मिथ्यात्व का बंध नहीं है, और कौन सा बंध नहीं होगा, नपुसक वेद का बंध नहीं होगा, तो वहां क्या होगा, मिथ्यात्व गया तो 21 प्रकृति हो गई। वेद 3 में से एक बनता था, उसके बदले अभी 2 में से एक बंधेगा, संख्या उतनी रही ना। और हास्य रति या शोक रति वो तो कॉम्बिनेशन वैसा ही रहेगा। तो अभी हम यहाँ संख्याएं पढ़ेंगे इस तरह से और बाद में उसकी चर्चा करेंगे। देखिए मोहनीय कर्म के 10 बंध स्थान है, 22 प्रकृतिक यानी 22 प्रकृति वाला बंध स्थान लगा है ना आगे, 21 प्रकृतिक, दोनों के आगे कॉमा कॉमा देना तो अर्थ समझ में आ जाएगा। फिर 17 प्रकृतिक, ये 17 प्रकृतिक आगे चल के देखेंगे तीसरे और चौथे गुणस्थान वालों के होगा 17 वाला। फिर 13 प्रकृतिक आगे आगे एक एक कषाय चौकड़ी का बंदर रुक जाता है तो वो भी 17 में से 13 हो गया। फिर 9 प्रकृतिक, उसके बाद 5 प्रकृतिक, 4 प्रकृतिक, 3 प्रकृतिक, 2 प्रकृतिक और 1 प्रकृतिक बंध स्थान। अब ये कौन सी प्रकृतियां हैं ये क्रम से जो कम होने वाली और कौन से गुणस्थान हैं उसकी अभी हम आगे चलकर पढ़ेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। अगला जो 21 नंबर का सूत्र है उसको भी नीचे अर्थ पढ़ते हैं, कल हमने पढ़ा था। देखो, मोहनीय कर्म के उक्त 10 बंध स्थानों में से मिथ्यात्व अनंतानुबंधी आदि 16, मिथ्यात्व रुकना, अनंतानुबंधी आदि 16 कषाय, अभी हमने देखे थे ना मिथ्यात्व 16 कषाय 17 हो गए, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुसक वेद, इन तीन वेदों में से कोई एक वेद कितने हुए 20, 17 और एक 18 हुए, 18 हुए, एक मिथ्यात्व 16 कषाय, एक वेद, हास्य रति तथा अरति और शोक, इन दोनों युगलों में से कोई एक युगल 20 हो गए ना, भय और जुगुप्सा ये दोनों ही बनते हैं, उसका उदय होवे या नहीं होवे। अभी उदय की बात बाद में हम सीखेंगे तो आपको ख्याल में आ जाएगा कि किसी के तो भय का उदय होता है, किसी को जुगुप्सा का उदय होता है और किसी के दोनों का ही उदय होता है और किसी को दोनों का ही उदय नहीं होता, फिर भी दोनों बनते रहते हैं। जब तक उसकी विच्छुति नहीं होगी भय जुगुप्सा की तब तक वो बनता रहेगा। इन 22 प्रकृतियों का एक बंध स्थान होता है, ये बंध स्थान एक है ऐसा कहेंगे, वहां 22 प्रकृतियों वाला एक बंध स्थान, यह संख्या की अपेक्षा स्थान गिनाने ना। इन 22 प्रकृतियों का का करना, 22 प्रकृतियों का बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है। अब यहाँ बंध स्थानों में जो भाव कहा है तो 22 प्रकृतियों को बांधने वाला भाव ऐसा लेना, कल हमने दर्शनावरण में देखा था 9 प्रकृति बांधने वाला एक भाव तो पहले और दूसरे गुणस्थान, 6 प्रकृतियों वाला बांधने वाला एक भाव यानी तीसरे से 8वें के पहले भाग तक, उसमें गुणस्थान की अपेक्षा चेंजेस कोई भावों में फर्क होगा, परंतु यहाँ भाव कौन सा है, दर्शनावरण के बांधने वाला जो भाव है वो भाव पकड़ना। मोहनीय में तो कोई बात ही नहीं क्योंकि मोहनीय के तो जो गुणस्थान है वो मोहनीय की अपेक्षा ही बनाई है, तो यहाँ तो वेदों को छोड़ दीजिए, मगर ये जो मिथ्यात्व और 16 कषाय है, जहां जिसका उदय है वहां उसका बंध है। मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व और चारों कषाय चौकड़ी का उदय है और वहां मिथ्यात्व और चारों कषाय चौकड़ी का बंध भी है। वेद के बारे में ये रूल नहीं रहे तो उसके बाद हम बाद में चर्चा करेंगे, मिथ्यात्व और 16 कषाय जो है ना यानी 4 कषाय चौकड़ी उसके बारे में ये रूल है। तो ये भाव यानी उन विशिष्ट प्रकृतियों को बांधने वाला जो कुछ भाव है वो भाव पकड़ना, वहां ऐसा परिणाम। अब इसका अर्थ देखते हैं, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी आदि 16 कषाय ये 17 ध्रुवबंधी प्रकृतियां हैं। ध्रुवबंधी का अर्थ ऐसा होता है कि जो प्रकृतियां निरंतर बनती रहे, अनादिकाल से बनती है, कब तक बनती रहेगी, जब तक इनकी विच्छित्ति, विच्छित्ति यानी बंध की विच्छित्ति कब होती है, जब अगले गुणस्थान में जाता है तो हम कहेंगे ये मिथ्यात्व की बंध की विच्छित्ति हुई। तो पहले गुणस्थान में तो बंध है, दूसरे के बाद मिथ्यात्व का बंध नहीं है तो हम कहेंगे मिथ्यात्व के बंध की विच्छित्ति पहले गुणस्थान में होती है, यानी पहले में तो बंध है आगे बंध नहीं है, फिर भी पहले में ही वो बंध हो गया, विच्छित्ति हो गया ऐसा कहेंगे। अनंतानुबंधी के बंध की विच्छित्ति दूसरे गुणस्थान में है, उसका अर्थ क्या है, पहले और दूसरे में बंध है, तीसरे से आगे बंध नहीं है। तो ये तो अनादि से बनती आएगी तो उसको हम कहेंगे ध्रुवबंधी, वैसे ज्ञानावरण की भी बात हमने देखी थी, ज्ञानावरण की पांचों ही बंदी है, कब तक, दसवें तक। तो कोई भी जीव दसवें गुणस्थान तक तो उसको निरंतर बनती रहेगी, ऐसा कोई होगा ना कि ग्यारहवें में जाके फिर वापस दसवें में आया है, तो उसको ग्यारहवें के लिए वो बंद नहीं होगा, फिर वापस आ गया। तो जब तक दसवें तक नहीं गया है तब तक उसको हम ध्रुव बंदी कहेंगे, निरंतर बंधने वाली। तो ऐसी निरंतर बंधने वाली प्रकृतियां भी बहुत है, कौन कौन सी है, ज्ञानावरण है पांच, दर्शनावरण की नौ कहेंगे, क्योंकि जब तक विच्छित्ति नहीं होती तब तक नौ के नौ बंधेगी। अब मोहनीय के बारे में मिथ्या तो है, सोला कशा है और भय जुगुप्सा है, अंतराय की पांचों है, इसको तो ध्रुवबंदी कहलाती है। और भी नाम कर्म की है, लघु है, उपघात है और निर्माण है, स्पर्श रस गंध वर्ण है, तेजस और कारमान प्रकृति है, तेजस शरीर और कारमान शरीर, ये जो ध्रुवबंदी प्रकृतियां कहलाती हैं। और कोई ऐसी अध्रुवबंदी है ना, क्या उसमें ऑप्शनल हो सकती है। अध्रुवबंदी में दो प्रकार है फिर, एक तो प्रतिपक्ष वाली यानी सप्रतिपक्ष जिसको कहते हैं, यानी बंधेगी तो सही परंतु उस ग्रुप में से कोई एक बंधेगी। जैसे हमने मेदिनी की देखी थी, साता बंधेगी या असाता बंधेगी, गोत्र में उच्च बंधेगा या नीच बंधेगा, वैसे नाम की भी गति में से कोई एक गति बंधेगी, जाति में से कोई एक जाति बंधेगी, तो उसको कहेंगे सप्रतिपक्ष वाली प्रकृतियां। मोहनीय में भी देखी, तीन वेद में से एक बंधेगी, हास्य रति युगल बंधेगा या शोक रति, तो उसको कहते हैं सप्रतिपक्ष वाली। और कोई अप्रतिपक्ष है परंतु कभी निरंतर नहीं बनती है, कभी कभी बनती है, ऐसी भी कोई प्रकृतियां होती है। फॉर एग्जाम्पल आहारक प्रकृति जो है, आहारक आहारक अंगोपाल, तीर्थंकर है, आयु की है, आयु कभी कभी बंधेगी ना, और उसमें परघात है, उच्छ्वास है, आतप है, उद्योत है, ऐसी जो प्रकृतियां हैं, हमारा क्रम से उसका भी अभ्यास आएगा। परंतु यह ध्रुवबंदी किसे कहना है, तो ये ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, अंतराय है और मोहनी की ये जो 17 है और 2-19, ये ध्रुवबंदी है, ये हमें पता होना चाहिए। और नाम कर्म की कुछ जो मैंने अभी गिनाए थे, तो क्या कहते इसको फिर पढ़ेंगे, मिथ्या तो और अनंतानुबंधी आदि 16 कषाय, ये 17 ध्रुवबंदी प्रकृतियां हैं। मोहनीय में से ये ध्रुवबंदी बताई उन्होंने, क्योंकि उदय के समान बंध की अपेक्षा परस्पर में उनका कोई विरोध नहीं है। भय और जुगुप्सा भी ध्रुवबंदी है परंतु उसको इसके साथ नहीं लिया, क्यों, एक उनको स्टेटमेंट करना था कि जैसे उदय है वैसे उसका बंध होता है, जहां उसका उदय है वहां बंध भी है, तो उदय के समान बंध भी है वहां, तो उसमें कोई विरोध नहीं है, इसलिए इनके साथ में एक तरह इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी वो ध्रुवबंदी ना सभी के सभी बनती है, एक तरह ने उनमें से एक ऐसा यहां नहीं लिखा। अब वेद के बारे में लिखेंगे उसमें से एक, तो एक तरह कहेंगे वहां पर, वो बात आगे लिखिए। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुसक वेद, इन तीनों वेदों का तथा हास्य रति और अरति शोक, इन दोनों युगलों का उदय समान बंध के साथ भी विरोध है। इसका अर्थ क्या है, तीनों का उदय तो नौवे गुण स्थान तक है, परंतु बंध को देखने जाओ तो नपुसक वेद का बंध मात्र पहले गुण स्थान वाले को ही है, और स्त्री वेद का बंध मात्र दूसरे तक यानी पहले को भी होगा, दूसरे को भी होगा, आगे स्त्री वेद का बंध नहीं होगा। तो इस तरह उदय के साथ वो बंध का कोई ये नहीं, क्योंकि उसके आगे उदय तो तीनों का है, छठे सातवें को हो या आठवें गुणस्थान या नौवे के पहले गुणस्थान में भी नपुसक वेद या स्त्री वेद का उदय तो रहेगा, परंतु बंध तो पुरुष वेद का ही होगा, इसलिए उदय और बंध का ऐसा कुछ वहां रिलेशन नहीं है, विरोध है वहां पर। यह बात बतलाने के लिए हास्य रति के बारे में भी ऐसा है, हास्य रति शोक रति का उदय तो नवे आठवें गुणस्थान के अंत तक है, और ये जो शोक और अरति का बंध तो छठे तक ही है, सातवें वाले को नहीं है, तो उसमें उदय के साथ उसका रिलेशन नहीं है, यह बताने के लिए उसको अलग निकाला। यह बात बतलाने के लिए इनके साथ में एकतर शब्द का प्रयोग किया गया है, किंतु भय और जिगुप्सा इन दोनों प्रकृतियों के साथ में एकतर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अभी यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ भी उदय और बंद का ऐसा कुछ नहीं, मैंने बताया था, भय और जुगुप्सा का उदय नहीं भी हो किसी को तो भी दोनों ही बनते हैं। उदय की पॉसिबिलिटी कब तक है भय और जुगुप्सा की? जो नौकशा है वो आठवें के अंत तक है, उदय की विच्छित्ति होती है ना वहां पर। परंतु बंद तो निरंतर चलेगा, कहां तक? भय और जुगुप्सा आठवें तक चलेगा ना उसका। हाँ, आठवें में हास्यरती भय जुगुप्से की विच्छित्ति होती है। अभी ये क्या हमारा पहले विषय हो चुका है गोमटसार में, और आपका भी यहाँ होगा, परंतु थोड़ा सुनेंगे तो ये बातें ख्याल में आ जाएगी। याद नहीं रहेगी तो कोई बात नहीं है। तो विच्छित्ति होती है ना, वहां तक बंद है, बाद में बंद नहीं है, इतना तो समझ लेना। बार बार सुनेंगे तो सहज रीति से याद भी हो जाएगा। देखिए, इसलिए उसके साथ एकतर शब्द नहीं लिखा, क्योंकि बंध के प्रति उनका परस्पर में कोई विरोध नहीं है। इन 22 प्रकृतियों का एक ही भाव में अवस्थान होता है। 22 प्रकृतियों का बंध करने वाला भाव ऐसा उसमें लेना। शंका, उक्त प्रकृतियों का किस एक भाव में अवस्थान होता है? उसका समाधान, 22 प्रकृतिक लिखा है, प्रकृतिक भी लिखा है कहीं कहीं, ठीक है, 22 प्रकृतिक एक भाव में अवस्थान है, यानी 22 प्रकृतियों वाला बंध करने वाला एक भाव ऐसा उसमें लेना। शंका, एक ही वस्तु में आधार और आधेय भाव कैसे बन सकता है? आधार और आधेय ने 22 प्रकृतियों का बंध है, और उसका आधार क्या है? 22 प्रकृतियों का बंध करने वाला भाव। तो एक ही वस्तु में आप कैसे दोनों बता रहे हैं? उसका समाधान, नहीं, क्योंकि संख्यान से संख्येय कथनचित पृथकभूत होता है, यानी जिसकी संख्या है और जो संख्येय यानी गिना जाता है, ऐसे उसमें संख्यान और संख्येय भेद किया। उसमें जिसको गिनना है वो संख्येय हो गया, इसलिए उसके आधारपना होने में कोई विरोध नहीं है। अब ये भाव किसको होता है पूछेंगे, ऊपर पूछा ना 22वें सूत्र में, तम मिच्छा दिट्ठिस, वह 22 प्रकृतिक प्रथम बंध स्थान मिथ्या दृष्टि के होता है, यानी मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में 22 प्रकृतियों का बंध है। यह मोहनीय की बात चल रही, अकेले हम अलग अलग प्रकृतियों के अलग अलग बंध स्थान देख रहे हैं, क्योंकि मिथ्यात्व प्रकृति का मिथ्या दृष्टि जीव के सिवाय अन्यत्र बंध नहीं होता। दूसरे गुणस्थान वाले को भी मिथ्यात्व का बंध नहीं है, और इसका भी कारण यह है कि अन्यत्र मिथ्यात्व प्रकृति का उदय नहीं होता है। ये मोहनीय के बारे में, क्योंकि मोहनीय के आधार से ही और जीवों के वैसे वैसे भावों के कारण ही ये गुणस्थान पड़े हैं। तो यहाँ मिथ्यात्व का उदय है और मिथ्यात्व का बंध भी है, उसके आगे के गुणस्थानों में नहीं है। क्या कहते हैं, कारण क्या है? अन्यत्र मिथ्यात्व प्रकृति का उदय नहीं होता, तथा कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। यह निमित्त की बात कर रहे हैं, परंतु फिर भी जब जब कार्य होता है तब दोनों ही कारण उपस्थित रहते ही है। निमित्त भी होता है वहां और उपादान भी है, निमित्त कार्य में कुछ नहीं करता है। फिर भी जहां मिथ्यात्व का उदय ही नहीं है, वहां मिथ्यात्व का वहां जीव का भाव भी नहीं है, वो बताता है ना। निमित्त भी वहां कार्य को बताने वाला है, तो वहां वो निमित्त नहीं है तो कहते वहां कारण नहीं है तो वहां कार्य भी नहीं है। ये कथन पद्धति, ऐसा नहीं समझना कि मिथ्यात्व का उदय हमको मिथ्यात्व कराता है। फिर भी ये कथन शैली है कि वहां कारण नहीं है तो कार्य नहीं है। तत्वार सूत्र में भी पूछते हैं ना कि सिद्ध भगवान वहां पर ही वात वलय तक ही लोकाकाश के अग्रभाग में क्यों विराजमान है, आगे क्यों नहीं जाते? तो कहते वहां धर्मास्तिकाय के अभाव के कारण, कारण नहीं है तो वहां कार्य भी नहीं होगा। परंतु हमें तो मालूम है उनकी उपादान योग्यता वहीं तक जाकर स्थिर होने की है, उसके आगे जाने की नहीं है। फिर भी यहाँ निमित्त की भाषा में कथन होगा, कहेंगे वहां वैसा कारण नहीं है इसलिए वहां वैसा कार्य नहीं हो रहा। समझ लेना, ये शास्त्रों की भाषा जो है ना वो नहीं समझते तो शास्त्र पढ़कर उल्टे उसमें अपने निमित्ताधीन दृष्टि बना लेते कोई जी, पोषण करते ना, क्योंकि निमित्त से कार्य होता है ऐसी मान्यता तो अनादि से पड़ी है। और जब ऐसा कोई, देखो यहाँ लिखा है कि नहीं, कारण के बिना कार्य नहीं होता, निमित्त के बिना कार्य नहीं होता, लिखा है कि नहीं लिखा? परंतु कहाँ लिखा है निमित्त से कार्य होता है? बिना नहीं होता मान्यता है, क्योंकि उसके बिना नहीं होता है। जब जब कार्य होता है तो निमित्त होता ही है, और कथन करने के लिए ऐसा ही कहेंगे निमित्त नहीं था इसलिए कार्य भी नहीं हुआ। परंतु वहां मूल कारण जो है उपादान, वो हमारे ख्याल में आनी चाहिए। ये तो कर्णानुयोग में तो इसे निमित्त की भाषा में ही कथन हो गए कि यहाँ ये ऐसा उदय नहीं है तो वहां वो बंद भी नहीं है। देखो, कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। यदि ऐसा न माना जाए तो अति प्रसंग दोष प्राप्त होगा। उसको अगर हम नहीं मानते हैं तो फिर अति प्रसंग दोष है नहीं, तो हाँ, कारण के बिना भी कार्य होता है ऐसा अति प्रसंग दोष आएगा। इसलिए यही सिद्ध होता है इस 22 प्रकृतिक प्रथम बंध स्थान का स्वामी मिथ्या दृष्टि जीव ही है। स्वामी है ने वो बंद करने वाला जीव। यहाँ पर बंध संबंधी भंग या भेद 6 होते हैं। जैसे 22 प्रकृतियों का बंध हो रहा है तो उसमें ऑप्शंस कहाँ कहाँ है? तो 3 वेदों में से किसी को स्त्री वेद बंधेगा, पुरुष वेद या नपुंसक वेद, तो 3 ऑप्शंस तो ये हो गए। अब हरेक वेद के साथ दो दो ऑप्शन लगाना, पुरुष वेद वाले को हास्य रति या शोकरति, स्त्री वेद वाले को हास्य रति या शोकरति, और नपुंसक वेद वाले को हास्य रति या शोकरति, इन 3 दुनी 6 हो गए ना। तो इसको कहते हैं 6 भंग, इसको भंग कहते हैं। प्रकृति या संख्या तो 22 की 22 है, उसको स्थान कहेंगे। और उसमें जो प्रकृतियों के जो ऑप्शन हम लेंगे वो अलग अलग कॉम्बिनेशन वाले, तो उसको भंग कहेंगे। तो 22 प्रकृतियों वाला एक स्थान है, उसमें 6 भंग होते हैं। भंग का अर्थ ख्याल में है ना, क्योंकि इसके आगे ऐसे भंग बताएंगे हर एक स्थान में, जहां जो ऑप्शनल बातें हैं वो बताएंगे। अभी इसी का विशेषार्थ कहते हैं। यहां पर जो 22 प्रकृतिक बंध स्थान के 6 भंग बतलाए हैं वे इस प्रकार होते हैं। उक्त 22 प्रकृतियों में मिथ्यात्व, 16 कषाय, भय और जुगुप्सा, ये 19 प्रकृतियां ध्रुवबंदी है। ध्रुवबंदी का अर्थ हमने देखा था, ये तो बनती ही है, ये तो फिक्स है सबके लिए, मिथ्यात्व जीव के लिए। अर्थात मिथ्यात्व गुणस्थान में इनका बंध निरंतर होता ही रहता है। निरंतर शब्द है, हर समय उसका बंध होगा ही। शेष 3 वेद और हास्य रति तथा अरति शोक, ये दोनों युगल अध्रुवबंदी, वो ध्रुव का ध्रुव करना, अध्रुवबंदी। हमने देखा था ध्रुवबंदी जो प्रकृतियां नहीं है वे अध्रुवबंदी है। अब अध्रुवबंदी में भी 2 प्रकार है, एक प्रतिपक्ष वाली है और एक अप्रतिपक्ष वाली है। हमने पहले मैंने बताया ना कि तीर्थंकर, आहारक द्वीक, 4 जो आयु है, और यो परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत वगैरह जो है वो कैसी है? अप्रतिपक्ष वाली है, बंधेगी तो बंधेगी, नहीं तो नहीं बंधेगी। परंतु सप्रतिपक्ष में क्या है? आइदर ऑफ बंधेगी, जैसे साता या असाता, उच्च या नीच गोत्र, इस तरह से कोई ना कोई एक तो बंधेगी, परंतु ग्रुप में से या वो ऑप्शनल 2 में से एक बंधेगी, तो उसको कहते हैं सप्रतिपक्ष। अध्रुवबंदी और सप्रतिपक्ष, देखो सभी प्रकृतियों में से ध्रुवबंदी हम अलग निकालते हैं तो रिमेनिंग जो है वो सब अध्रुवबंदी है। ध्रुवबंदी मैंने बताई थी ना, ज्ञानावरण की है 5, दर्शनावरण की 9 है, अंतराय की 5 है, मिथ्यात्व 16 कषाय, भय जुगुप्सा, तेजस कारमाण, स्पर्श रस गंध वर्ण, अगुर लघु उपघात, निर्माण, ये जो है वो ध्रुवबंदी है। इनको छोड़कर बाकी है वो अध्रुव बंदी है। तो अध्रुव बंदी में से फिर वो 11 वाली निकाल देना कि आहारक है, तीर्थंकर वगैरह वगैरह, वो कैसी है? अध्रुव बंदी में से अप्रतिपक्ष वाली है और बाकी जो है वो सप्रतिपक्ष वाली है। तो इनको क्या कहा है? ये जो है वो अध्रुव बंदी और सप्रतिपक्षी है, अर्थात एक साथ एक जीव में तीन वेदों में से किसी एक ही वेद का और दोनों युगलों में से किसी एक युगल का बंध होता है। अतएव नाना जीवों की अपेक्षा तीनों वेदों और दोनों युगलों के विकल्प से, विकल्प है ऑप्शन, यहाँ विकल्प है राग, विकल्प है विचार, ऐसा यहाँ अर्थ नहीं लेना। वे विकल्प के बहुत अर्थ होते हैं ना, विकल्प है ऑप्शंस कोई, परस्पर गुणा करने पर ये नाना जीवों की अपेक्षा, एक जीव को तो 22 प्रकृतियों का ही बंध होगा एट अ टाइम, तो उसको कोई एक ही वेद का बंध होगा, उसी जीव को चलकर बाद में कोई अन्य वेद का भी बंध हो सकता है। परंतु यहाँ जो बात है, ये जो विकल्प या भंग बताए हैं वो अनेक जीवों की अपेक्षा, नाना जीवों की अपेक्षा बताए। तो तीन वेद में से एक यानी वो तीन हुए और ये युगल में से एक यानी दो हुए, तीन गुना दो करना, गुणा करने पर 6 भंग हो जाते हैं, जो कि क्रमशः इस प्रकार है। यही बात नीचे बताई है, देखो ऊपर ये 6 भंग है ना, पहले लाइन में 1 2 3 4 5 6 अलग अलग भंग बताए। अब पहले भंग में क्या लिया है? एक मिथ्यात्व, फिर 16 कषाय, फिर पुरुष वेद लिया, पुरुष वेद के साथ हास्य रति लिए और भय जुगुप्सा लिया, तो 22 हो गए। दूसरे भंग में मिथ्यात्व 16 कषाय तो लिया, अभी स्त्री वेद, वो स्त्री हुआ है, स्त्री करना उसको, उस वहां पर भी और नीचे चौथी पांचवी लाइन में भी स्त्री वेद। देखो इन्हें क्रम से पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुसक वेद लिया और उसके साथ हास्य और रति लिए, बराबर पहले तीन लाइन से। अब अगले तीन लाइन में चौथी पांचवी छठे में फिर दोबारा पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुसक वेद, ऐसे तीन ऑप्शंस लिए और उसके साथ अरति और शोक लगाया। सबकी संख्या तो 22 को फिक्स है, परंतु ये ऑप्शनल जो कुछ है वो उन्होंने बता दिया। इस तरह से ये 6 भंग कहलाते। जिस प्रकार यहाँ पर उक्त 6 भंगों की उत्पत्ति बतलाते हुए उनका क्रमशः उच्चारण क्रम बतलाया गया है, उसी प्रकार आगे भी जहाँ जहाँ भंगों का उल्लेख आया है ये भंग कहलाते हैं। ये भंग शब्द कहीं सुना है आपने? हाँ, सप्तभंगी, वहाँ भी भंग होते हैं ना, वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस, उसको सप्तभंगी कहा। तो यहाँ भी भंग कहेंगे, भी आगे भी, वहाँ भी जो जो कुछ ऑप्शनल है उसको हम गुणा करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ भंग हमें प्राप्त हो जाएंगे। जैसे यहाँ 3 ऑप्शनल है और 2 ऑप्शनल है, तो 3 को 2 से गुणा किया। आगे भी जहाँ जहाँ भंगों की बात कहेंगे वहाँ ऐसे ही उसका क्रम जान लेना, भंगों का यही क्रम जानना चाहिए। अब अगले पृष्ठ 23 नंबर का सूत्र, तथ्य इमम एक विषाये ठाणम मिच्छत्तम नवंसय वेदम वच्च। अब अगला स्थान बता देंगे। मोहनीय कर्म के उक्त दश बंध स्थानों में प्रथम बंध स्थान की 22 प्रकृतियों में से, डायरेक्ट 21 प्रकृतियों वाला ये स्थान ऐसा नहीं कहते, 22 में से अभी मिथ्यात्व को छोड़कर रिमेनिंग 21 ऐसा कहेंगे। तो 22 प्रकृतियों में से मिथ्यात्व और नपुसक वेद को छोड़कर यह 21 प्रकृतिक द्वितीय बंध स्थान होता है। छोड़े कौन कौन से? मिथ्यात्व। तो 22 में से कितने गए? एक ही गया, क्योंकि नपुसक वेद गया, परंतु अन्य दो वेद में से एक वेद बंधेगा। शंका, नपुसक वेद को छोड़कर यह 21 प्रकृति द्वितीय बंध स्थान होता है। शंकाकार पूछता है, यहां सूत्र में और नपुसक वेद को इस प्रकार च शब्द का प्रयोग करना चाहिए, ऊपर क्या लिखा है? मिच्छत्तम नवंसय वेदम वच्च, तो नपुसक वेदम च चाहिए, क्योंकि हम कैसे कहते हैं, जैसे ए और बी ऐसा लिखते ना, तो संस्कृत में दे ए बी च ऐसा लिखते हैं, ये च शब्द जिनको जिनको बताया और शब्द हम दोनों के बीच में डालते हैं, ये उसके बाद च शब्द आता है। तो यहाँ लिखते हैं च शब्द का प्रयोग करना चाहिए था, अन्यथा समुच्चयार्थ के जानने का और कोई उपाय नहीं है कि मिथ्यात्व और नपुंसक वेद ऐसा लिखना चाहिए था, आपने वो च शब्द नहीं डाला है। तो उसका समाधान नहीं, क्योंकि च शब्द के बिना भी समुच्चय अर्थ का ज्ञान हो जाता है। व्यतिरेक रूप पर्यायार्थिक नए वाले जीवों के अनुग्रह के लिए यह सूत्र कहकर अब विधि रूप द्रव्यार्थिक नए वाले जीवों के अनुग्रह के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। व्यतिरेक यानी यह निषेध रूप विधि और व्यतिरेक ऐसा, विधि यानी बता देना जो है वो प्रकृतियों के नाम गिनाना, और व्यतिरेक यानी जिनको छोड़कर किसको छोड़ा है, तो मिथ्यात्व और नपुंसक वेद इनको छोड़ा है, इनको छोड़कर रिमेनिंग ऐसा कहा। ये तो निगेटिव में बताए ना, अब पॉजिटिव में बताएंगे। तो ये व्यतिरेक और विधि इसका अर्थ होता है। विधि रूप द्रव्यार्थिक नए वाले जीवों के अनुग्रह के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। अब हम ऊपर सूत्र पढ़ेंगे, यानी कौन से प्रकृतियों का बंध है, 21 कौन कौन सी है उसको अभी गिनाएंगे, फिर दोबारा बताएंगे। 16 कषाया, देखो मिथ्यात्व का नाम अभी नहीं लिया है, 16 कषाय से शुरुआत की। इथि वेद पुरुष वेदो दोन्नम वेदानम एकदरम, है ना, दोनों में से एक। हस्सरदि अरदि सोग दोन्नम जुगलानम एकदरम, दो युगल में से एक युगल। भयदुगुंचा एदासिम एक विसाए पयडीनम एकम्मि चेवठानम बंधमानस, इन 21 प्रकृतियों का एक बंध स्थान है। अब नीचे इसी का अर्थ है। अनंतानुबंधी आदि 16 कषाय, स्त्री वेद, यहाँ भी स्त्री बराबर करना, स्त्री वेद और पुरुष वेद, इन दोनों वेदों में से कोई एक वेद। हास्यरति और अरतिशोक, इन दोनों युगलों में से कोई एक युगल। भय और जुगुप्सा, इन 21 प्रकृतियों के बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है। इनका एक बंध स्थान कहो या इनका एक भाव में वो स्थित है ऐसा कहो, एक ही बात है, क्योंकि भाव होगा तभी उतना बंध होगा ना। तो उसका हमेशा जब जब उन्होंने ट्रांसलेशन किया उनका एक भाव है ऐसा लिखा है, और वहाँ तो एक स्थान है बंध मानस ऐसा लिखा था। दोनों का अर्थ एक ही है कि वे जीव एक भाव में स्थित है। अब इसी का अर्थ कहते हैं एक विषय, यह संबंध में षष्ठी विभक्ति है, यानी 21 का ये संबंध सूचक है ना। षष्ठी विभक्ति हमें हमेशा संबंध सूचक होती है, दो वस्तुओं में संबंध बताता है, ये किसका लड़का है, ऐसे का लगा है ना बीच में, तो ये राम का लड़का है, तो का ये षष्ठी विभक्ति कहलाती है। तो एक विषय, यह संबंध में षष्ठी विभक्ति है, इन प्रकृतियों का एक में ही अवस्थान है ऐसा कहने पर, 21 प्रकृतिक बंध स्थान में अवस्थान होता है ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। एक में अवस्थान होता है ने, एक बंध स्थान में उनका अवस्थान होता है, उनका रहना होता है, या एक भाव में स्थित रहते हैं, ऐसा उसका अर्थ लेना। अथवा 21 प्रकृतियों के बंध योग्य परिणाम में अवस्थान होता है ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। बंध स्थान में वो स्थित है कहो, या वो बंध के लिए जो कारणभूत भाव है उसमें स्थित कहो, एक ही बात है। इसलिए ये बंध स्थान में उनका अवस्थान है या एक भाव में अवस्थान होता है ऐसा कहना, उनका अर्थ एक ही होता है। शेष सूत्रार्थ सुगम है। अब यहाँ पढ़ने के पहले हम देखते हैं यहाँ भंग कितने हो गए। हाँ, चार कैसे, हाँ दो वेद में से एक वेद बनता है और दो युगल में से एक युगल, तो दो गुना दो चार हो गए, चार भंग हो गए। गुणस्थान कौन सा होगा, दूसरा गुणस्थान। यहाँ पर उक्त दोनों वेद और हास्यादि दोनों युगलों के विकल्प से, विकल्प यानी ऑप्शन से, दो गुना दो चार होते हैं, चार भंग होते हैं। देखो कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, शुरू शुरू में भंग क्या है था। देखिए विधि यानी वो अस्थि रूप कथन, और विधि और निषेध ऐसा कहते ना, निषेध या यहाँ व्यतिरेक शब्द आया है। व्यतिरेक में क्या बताया, 22 में से किसका बंधन नहीं होता वो बताया। अरे पर किसका होता है वो बताओ ना, तो उसको कहेंगे विधि रूप कथन। जैसे हम कहते ना पहले में पहले कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं परद्रव्य नहीं हूँ, और मैं राग द्वेष नहीं हूँ, मगर क्या हूँ वो बताओ ना, कि शून्य हो आप, तो कहते हैं मैं ज्ञान दर्शन में हूँ। एक कल प्रवचन सर की गाथा चल रही है ना, हाँ मैं शुद्धात्मा हूँ, उसके सब विशेषण आए थे। हाँ समय सार में तो है ही पेज पेज पर, अभी अपना ये इसमें भी चल रहा है ना प्रवचन सार में, हाँ उसमें विधि रूप कहते हैं। क्या नहीं है वो बताना और क्या है वो बताना, ये दोनों तरफ से वस्तु की सिद्धि होती है ना। मैं आत्मा हूँ तो क्या है, तो ज्ञान दर्शन मैं हूँ, और जो कुछ उसके सब विशेषण है वो तो विधि रूप कथन होगा। और ये शरीर नहीं है, राग द्वेष नहीं है, वो सब जो है परद्रव्य नहीं है, वो निषेध रूप कथन होगा। तो यहाँ कौन से प्रकृतियों का बंधन नहीं है वो बताया, वो व्यतिरेक हुआ, यानी किसको छोड़कर, परंतु किसका बंध है वो विधि रूप हुआ। यह लिखा ना, क्या शब्द आया था विधि रूप, विधि रूप द्रव्यातिक नए वाले जीवों के अनुग्रह के लिए, ख्याल है। अब आगे बढ़ेंगे 25 नंबर का सूत्र, तम शासन सम्मादिष्ठिस्स, वह 21 प्रकृतिक द्वितीय बंध स्थान सासाधन सम्यक दृष्टि के होता है। यह मोहनीय कर्मों के बंध स्थानों की बात चल रही है। पहला बंध स्थान हमने 22 प्रकृतियों का देखा था, और अब यह द्वितीय बंध स्थान 21 प्रकृतियों का देखा, क्योंकि दूसरे गुणस्थान से आगे अनंतानुबंधी चतुष्क और स्त्री वेद का बंध नहीं होता। तो इस पर से हमें पता चल गया कि अनंतानुबंधी और स्त्री वेद की बंध की विच्छित्ति हो गई। यहाँ पर बंध की कहा, उदय की नहीं कहा। अनंतानुबंधी का उदय भी मिट जाएगा, परंतु स्त्री वेद का उदय तो 9वें तक है। तो ये दोनों की यहाँ बंध की विच्छित्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर ही इतना ये बंध स्थान है। आगे वेद का बंध तो है, परंतु अभी अकेले पुरुष वेद, यानी उसमें अभी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ तक ऑप्शन है, और इसका भी कारण यह है कि आगे के गुणस्थानों में अनंतानुबंधी कषायों के उदय का अभाव है। वो बंधी बराबर दिखता है क्या, बंधी हमने देखा था, मिथ्यात्व 16 कषाय वगैरह जो है, जहां उदय है वहीं पर उसका बंध है। तथा कारण के बिना कार्य संभव नहीं है, क्योंकि वैसा मानने पर विरोध आता है। अनंतानुबंधी का उदय न हो और अनंतानुबंधी बंध जाए, ऐसा कभी नहीं होता। मिथ्यात्व का उदय न हो और मिथ्यात्व बंधे, ऐसा कभी नहीं होता। ये कारण के बिना कार्य नहीं होता। अब आगे 26 नंबर का सूत्र, तथ्य इमम सत्तरसन्नम ठाणम। देखो कोई कोई ऐसे भी द्रव्यानुयोग में ऐसी कथन पद्धति है ना, कर्मों का उदय है परंतु उसमें नहीं जुड़ता, और फिर वो तो कोई ऐसा मानते मिथ्यात्व का उदय भले हो परंतु उसमें जीव नहीं जुड़ता है और सम्यक तो प्राप्त करता है, ऐसा कभी नहीं होता है। उदय क्या बताता है, यहाँ मिथ्यात्व परिणाम है। अन्य कर्मों के उदय में भले नहीं जुड़े, परंतु मिथ्यात्व का उदय चले और यहाँ सम्यक तो प्राप्त हो गए, ऐसा नहीं होता। जिस समय सम्यक तो प्राप्त होता है उस समय वहां उदय भी नहीं रहता। अन्य जो वेदनी आदि साता असाता का उदय भले हो तो जुड़ता नहीं है, नहीं जुड़ना या नहीं जुड़ना है, उस रूप भाव परिणमन करना इसका अर्थ होता है। हमें क्या लगता है वो उदय के उदय आया सामने देखते रहा और फिर उसमें जुड़ा, ऐसा नहीं होता उसका। जैसे क्रोध होना ही क्रोध कर्म के उदय में जुड़ गया, मान होना ही मान के उदय में जुड़ गया, मिथ्यात्व होना ही वो मिथ्यात्व में जुड़ गया है, वो तो नहीं जुड़ता है। जब वो सम्यक रूप परिणमन हो गया तब उसको कहेंगे ये नहीं जुड़ा है। हमें ऐसा लगता है उदय तो हो रहा है परंतु जीव नहीं जुड़ा है और अंतरंग में जैसे बाहर बारिश तो हो रही है और हम घर में बैठे हैं, ऐसा नहीं होता कभी। उदय है मीन्स जीव स्वरूप परिणमता है, वहां परिणमन उसका चालू है, क्योंकि निमित्त के द्वारा हमें वो कार्य की पहचान हो रही है। मिथ्यात्व का उदय ही बता रहा है कि वहां मिथ्यात्व का भाव चल रहा है जीव का। ये मोहिनी के बारे में है, ये अन्य अन्य कर्मों में मोहिनी के बारे में ही है, क्योंकि अन्य कर्मों में ऐसा है ना, असाता का उदय हो परंतु असाता का बंधन नहीं हो, ऐसा हो सकता है ना? और बंध साता का, तो उसमें जुड़ना नहीं जुड़ना, जुड़ना यानी मोहिनी, जुड़ने का कार्य मोहिनी में होता है। असाता का उदय हो और जीव ये जो उसमें जो द्वेष रूप परिणमित न हो तो हम कहेंगे वो नहीं जुड़ा है, वहां वो बात है। परंतु जिस भाव रूप से परिणमता है, मिथ्यात्व है या कषाय रूप परिणमता है, तो मोहिनी के उदय में तो वो जुड़ ही रहा है, ऐसा कहेंगे। ख्याल आता है? ये मिथ्यात्व के बारे में खास समझना कि कषायों का उदय है परंतु हम उसमें नहीं जुड़े, ये उदय है क्या बताता है कि वहां कषाय हो रहे। क्यों? हाँ, उसमें ये नियम नहीं है कि जहाँ उदय है, ये बंद और उदय की जो नियम है ना, जैसे वेदों के बारे में भी है, हमने अभी भी बताया कि नवे गुण स्थान तक तो तीनों ही वेदों का उदय है, परंतु बंद तो पहले में नपुंसक का होगा, पहले दूसरे में स्त्री वेद का होगा और आगे अकेले पुरुष वेद का ही होगा। तो ये बंद और उदय के कोई नियम है खास, ये मोहिनी के मिथ्यात्व और सोलह कषाय के बारे में ये नियम है खास कि जिनके आधार पर गुणस्थान बनते हैं, गुणस्थान उनके उदय और बंध की अपेक्षा बनते हैं। जहां मिथ्यात्व का उदय है वो मिथ्यात्व गुणस्थान है, इस तरह से हमने देखा ना प्रत्येक गुणस्थान में कौन कौन से कर्मों का उदय है। हाँ, आपका प्रश्न है श्रेणी चढ़ता है जीव, किसी भी वेद के साथ क्यों न चढ़े, उसको पुरुष वेद का बंध तो है नवे के पहले भाग तक, जहां तक वेद का उदय चल रहा है। कौन से वेद का ऐसा मत लेना अभी, जहां तक वेद का उदय है वहां तक वेद का बंध भी है। कौन सा वेद है वो अभी नहीं मत लेना, वो तो बहुत छोटा अल्प है। नवे गुणस्थान में क्या होता है, वेद का जो उदय काल है वो अलग अलग है, उसकी बात तो वो तो और बहुत सूक्ष्म चर्चा है वो, क्योंकि वो पुरुष वेद का उदय का काल थोड़ा ज्यादा है स्त्री वेद के उदय से, वो तो बहुत थोड़ा अल्प उसमें फर्क है, उसकी यहाँ चर्चा अपेक्षित नहीं है। अपना विषय ये जो अलग चल रहे है ना, यहाँ वेद का उदय है तो वेद का बंध इतना ही लेना, स्त्री वेद के उदय में स्त्री वेद का ही बंध हुए ऐसा नहीं लेना। किसी भी वेद का उदय है और कोई ना कोई वेद का वहां बंध हो रहा है, अभी वो कौन सा होगा तो गुणस्थानों की अपेक्षा वहां वो ऑप्शन रहेगा। पहले गुणस्थान में तीन में से एक का बंध होगा, दूसरे गुणस्थान में दो में से एक का होगा और तीसरे के आगे एक पुरुष वेद का ही बंध होगा। देखो यहाँ क्या कहते हैं, देखो अभी 26वां सूत्र हम पढ़ने जा रहे। तत्थ इमं सत्तरसन्नम ठाणम अनंताणुबंधी कोहमाण माया लोभम इत्थि वेदम वज्ज। अभी किसको छोड़कर वाला वो बंध स्थान है उसकी बात चल रही है। मोहनीय कर्म संबंधी उक्त दश बंध स्थानों में द्वितीय बंध स्थान की 21 प्रकृतियों में से अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और स्त्री वेद को छोड़कर, वो स्त्री बराबर करना, स्त्री वेद को छोड़कर यह 17 प्रकृतिक तृतीय बंध स्थान होता है। तीसरा जो बंध स्थान है, अब इसके आगे स्त्री वेद का भी बंध नहीं है। किसका नहीं है वो अभी ये व्यतिरेक वाला कथन है। दूसरे गुण स्थान में 21 का बंध है, अब उसके आगे अभी हम अगला वाला बंध स्थान देख रहे हैं 17 प्रकृतियों वाला। तो उसमें क्या नहीं है वो बताएंगे। अनंतानुबंधी चार का बंद नहीं होगा वो बताएंगे, और स्त्री वेद का नहीं होगा परंतु पुरुष वेद का होगा। इसलिए संख्या तो 21 में से चार ही कम करना, तो 17 वाला ये बंद स्थान है, 10 वाला पहला, 22 वाला पहला बंद स्थान, 21 वाला दूसरा बंद स्थान, और ये 17 वाला तीसरा बंद स्थान। ख्याल आते हैं? पूर्व सूत्रोक्त यानी पहले सूत्र में बताया हुआ 21 प्रकृतियों में से अनंतानुबंधी चतुष्क के निकाल देने पर 17 प्रकृतियां होती है। यह सूत्र व्यतिरेक नए वाले जीवों के अनुग्रह के लिए कहा गया है। व्यतिरेक नए यानी अभी क्या नहीं है ये छोड़कर बताने वाला नए, उसको व्यतिरेक नए कहा गया। वे 17 प्रकृतियां कौन सी है ऐसा पूछने वाले मंद बुद्धि शिष्यों के अनुग्रहार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं। अब ये विधि रूप कहेंगे कौन सी है, तो बार बार बताने से हमारी याद हो जाएगी ना। हाँ। तो ऊपर उसका उत्तर बताते हैं 27 नंबर के सूत्र में। वारस कसाय पुरुष वेदो हस्सरदि अरदि सोग दोन्नम जुगलाणम एककदरम भय दुगुंचा एदासी सत्तरसन्नम पयडीनम एकम चेवठानम बंद मानस। इसका अर्थ लिखते हैं नीचे, अप्रत्याख्यानावरणीय आदि 12 कषाय। ये 12 कषाय कौन कौन से है? संज्वलन, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, ये 12 कषाय। पुरुष वेद, अब यहाँ न पुस्तक वेद है न स्त्री वेद है, अकेले पुरुष वेद है। हास्य रति और अरति शोक, इन दोनों युगलों में से कोई एक युगल। भय और जुगुप्सा, इन 17 प्रकृतियों के बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है, यानी उनका एक भाव है ऐसा कहेंगे, या उनका एक बंध स्थान है ऐसा कहेंगे। स्थान एक है, कितने प्रकृतियों का? 17। ऑप्शन कहाँ है? युगल में, यह युगल या वह युगल। भंग कितने हो गए? दो। देखो शंका किसमें अवस्थान होता है, उसका समाधान 17 संख्या एक एक स्थान में, अथवा इन 17 प्रकृतियों के बंध योग्य जीव के परिणाम में उनका अवस्थान होता है, यह अर्थ ग्रहण करना चाहिए। ये जो 17 संख्या है, एक स्थान में 17 संख्या ना, वो 17 संख्या में अवस्थान होता है, वो उसको बंध करने वाले भाव में अवस्थान होता है, ऐसा उसका अर्थ लेना। शेष सूत्रार्थ सुगम है। यहाँ पर हास्यादि दो युगलों के विकल्प से दो भंग होते हैं, विकल्प है ना ऑप्शन, इसका क्या पर्याय है ऐसा कहते हैं ना, वो हिंदी में कहते, उसको पर्याय भी कहते हिंदी में, दूसरी क्या इसके लिए पर्याय है, दूसरे क्या ऑप्शन है। अब 28 नंबर का तम यानी ये बंद जो 17 का जो बंद स्थान है वो कौन से गुण स्थान में होता है उसकी बात करेंगे। तम यानी वह बंद स्थान सम्मा मिच्छा दिठिस्स वा असंजत सम्मा दिठिस्स वा, वह 17 प्रकृति तृतीय बंद स्थान सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि के होता है, क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान से ऊपर अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय चतुष्क का बंध नहीं होता, क्योंकि वह उदय भी नहीं है, हमने देखा था ना। और इसका भी कारण यह है कि वहां पर स्वोदय, स्वोदय ने स्व का उदय, स्व ने स्वभाव का उदय, आप क्या कहते हैं? हाँ हाँ जिस कषाय का उदय, देखो ये क्या कहते हैं, अप्रत्याख्यानावरण की बात चल रही ना, तो अप्रत्याख्यानावरण का बंध कब होता है, जब वहां स्वोदय होता है, स्वोदय ने अप्रत्याख्यान के बंद की बात है ना, तो जब अप्रत्याख्यान का उदय होगा तभी अप्रत्याख्यान का बंद होता है, उसको स्वोदय कहा। स्वोदय ने जिसकी बात चल रही है उसकी, जिस कषाय की बात चल रही है उसी का उदय होना उसको स्वोदय कहते हैं। देखो फिर से पढ़ती हूँ, इसका कारण भी यह है कि वहां पर स्वोदय अर्थात अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय का अभाव है, जिस कषाय का उदय है उस कषाय का वहां बंद भी है, यह हमने पहले ही देखा था। अप्रत्याख्यानावरण का बंद कब होगा, अप्रत्याख्यानावरण का उदय होगा तब, वैसे हर एक में ले लेना। अनंतानुबंधी का बंद कब होता है, जब उसका उदय होता है, उसको कहेंगे स्वोदय। जो स्वोदय है, उस कषाय का उदय है, वहां उस का बंद है, उसको स्वोदय कहा। इसलिए सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि, ये दोनों गुणस्थान इस 17 प्रकृतिक बंध स्थान के स्वामित्व को प्राप्त होते हैं, यानी उनको ये 17 प्रकृतियों का बंध है अपनी भाषा में। तीसरे गुणस्थान वाले को कौन से कषाय का उदय हो रहता है, तीसरे वाले को? हाँ, दीन कषाय चोपड़ी, बराबर। तो बंध भी उतना होगा उसको, ये 17 वाला बंध स्थान तीसरे को भी होगा और चौथे को भी होगा। अब 29 नंबर का सूत्र, तत्थ इमं तेरसन्नम ठाणम अपच्चखानावरणीय कोधमान माया लोभम वच्च। अभी 17 के आगे जब जाएंगे हम, तो और 4 उसमें से माइनस करेंगे। मोहनीय कर्म संबंधी उक्त 10 बंध स्थानों में तृतीय बंध स्थान की 17 प्रकृतियों में से अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध मान माया और लोभ को छोड़कर यह 13 प्रकृतिक चतुर्थ बंध स्थान होता है। हम घटाते जा रहे हैं ना अभी, क्योंकि अभी अप्रत्याख्यानावरण का उदय भी नहीं होगा और बंद भी नहीं होगा। अब ये कौन से गुणस्थान की बात चली होगी, पांचवे की। हाँ, वज्ज ऐसा कहने पर वज्जी अर्थात छोड़कर ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। ऊपर लिखा ना वज्ज, वज्ज ने हम वर्ज कहते ना, वर्जित, वर्जित ने उसको छोड़कर। शेष सूत्रार्थ सुगम है। पूर्वोक्त 17 प्रकृतियों में से अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय चतुष्को को घटा देने पर 13 प्रकृतियां होती है। वे 13 प्रकृतियां कौन सी है, इस प्रकार भक्ति से पूछने पर उस शिष्य के अनुग्रह के लिए क्या कहते हैं, शिष्य भी कैसा है, भक्ति से पूछता है, भले मंदबुद्धि है परंतु विनयशील है, अनुग्रह के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। अथवा पहले अनुमान से जिस 13 प्रकृतिक अर्थ को जाना है उसी के दृढ़ीकरण के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। हमने तो अभी जान लिया कि अनुमान लगा दिया, ये 4 नहीं है तो कौन सी रह गई, ये तो हम अनुमान से भी जानते हैं, फिर भी उसको और दृढ़ करने के लिए दोबारा बताते। अठ कषाया, कौन से 8 कषाय अभी? हाँ, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, ये 8 कषाय। पुरुष वेदो हस्सरदि अरदि सोग दोन्नम जुगलाणम एकदरम भय दुगुंछा एदासिम तेरसन्नम पयडीनम एकम्मी चेवट ठाणम बंधमानस। प्रत्याख्यानावरणीय आदि 8 कषाय, पुरुष वेद, हास्यरति और अरति शोक, इन दोनों युगलों में से कोई एक युगल, भय जुगुप्सा, इन 13 प्रकृतियों के बंद करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है। फिर शंका, किस एक में अवस्थान होता है, तो 13 संख्याक एक स्थान में अवस्थान होता है। ये जीवों का कहाँ स्थान है, तो 13 संख्या वाला जो एक वो बंध स्थान है उसमें कहेंगे, या एक भाव में अवस्थान है कहेंगे। 13 प्रकृतियों के एकत्व कैसे संभव है, ये जो 13 अलग अलग प्रकृतियां हैं उनमें एकत्व कैसे आपने ले लिया, ऐसा प्रश्न है। तो उसका समाधान, 13 इस संख्या सामान्य की अपेक्षा से 13 प्रकृतियों के एकत्व संभव है। यहाँ 13 ये संख्या में एकत्व लेना है, 13 संख्या वाला मोनिय का 13 का बंध जब कहेंगे तो ये एक स्थान होता है ना उसका। अथवा 13 प्रकृतियों के बंध योग्य परिणाम में उक्त 13 प्रकृतियों का अवस्थान होता है, इस अपेक्षा से उनके एकत्व बन जाता है। ये तो हमने पहले भी देखा था, उतनी उतनी प्रकृतियों का बंध करने वाला एक भाव ऐसा करके उसमें एकत्व लिया है उन प्रकृतियों में। शेष सूत्रार्थ सुगम है। यहाँ पर हास्यादि दोनों युगलों के विकल्प से 2 भंग होते हैं। ये कौन से गुणस्थान की बात चल रही है? पांचवा। तो हास्य रति होगा या अरति शोक, तो दो विकल्प हो गए यहाँ, दो भंग हो गए। तम संजदा संजदस उक्त तेरह प्रकृतिक चतुर्थ बंध स्थान, वो ध बराबर करना, संयता संयत के होता है। तो संयता संयत को ये चतुर्थ बंध स्थान होता है, क्योंकि पंचम गुणस्थान से ऊपर प्रत्याख्यानावरण कषाय चतुष्क का बंध नहीं होता। पहले हमने देखा था ना उसका कारण, वो निमित्त बता दिया यहाँ। और इसका भी कारण यह है कि ऊपर के गुणस्थानों में प्रत्याख्यानावरणीय कषाय के उदय का अभाव है, इसलिए तेरह प्रकृतिक बंध स्थान का स्वामी संयता संयत ही होता है। अकेले पांचवे गुणस्थान में ही ये बंध का स्थान है तेरह वाले प्रकृति का। अब 32 नंबर, तथ इमम नवन्नम ठाण पच्चखाना वर्णीय कोहमाण माया लोहम वज्ज। अभी नौ वाला स्थान बताएंगे, पहले जो तेरह है उसमें से चार और बात करेंगे। हाँ, कौन से बात करेंगे? प्रत्याख्यानावरण। हाँ, देखो मोहनीय कर्म के उक्त दश बंध स्थानों में चतुर्थ बंध स्थान की तेरह प्रकृतियों में से प्रकृतियां में से हुआ है, प्रकृतियों में से प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध मान माया और लोभ कषाय को छोड़ने पर यह नव प्रकृतिक पंचम बंध स्थान होता है। प्रत्याख्यान अभी पांचवे की बात थी ना, अभी छठे के ऊपर आ गया, तो उसमें ये वो तो हाँ बराबर है, क्योंकि देखो पहले भी हमने देखा था ना लोभम पहले लिखा है, लोहम लोभम दोनों ही, पहले लोभ आया है अनंतानुबंधी कोहमाण माया लोभम, लोभ कर देना वहां, क्योंकि 29वें सूत्र में और 26वें सूत्र में लोभ ही लिया है उन्होंने। लोभम करना उसको। अब हम आगे पढ़ेंगे, हाँ इसका अर्थ करेंगे 32 का। अभी 95 पेज पर आ गए। पूर्वोक्त तेरह प्रकृतियों में से प्रत्याख्यानावरणीय कषाय चतुष्क के घटाने पर नौ प्रकृतियां होती हैं। व्यतिरेक मुख से अभी माइनस करके हम देखते हैं किसको छोड़कर उसको व्यतिरेक कहा। व्यतिरेक मुख से नव प्रकृतिक बंध स्थान को निरूपण करके अन्वय और व्यतिरेक से वस्तु का निर्णय होता है। इस न्याय के अनुसार अन्वय मुख से उसी स्थान को निरूपण करने के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। यह अन्वय और व्यतिरेक, अन्वय ने जिसको पहले विधि कहा था, विधि निषेध कहो या अन्वय व्यतिरेक कहो एक ही बात है। पहले व्यतिरेक मुख से ने कौन सी बात की वो बताया, अब अन्वय ने कौन सी है, कौन सी कंटिन्यूटी है उसको बता रहे, कौन सी बन रही है जो पहले भी बन रही थी और अब भी बंधेगी और किसको छोड़कर बंधेगी वो बताया। अलग अलग शब्दों का अलग अलग अर्थ आता है। ये अन्वय और व्यतिरेक हमने वो पंचाध्यायी में भी बहुत उसकी चर्चा की थी, वो वहाँ गुण को अन्वय कहा था और पर्यायों को व्यतिरेक कहा था। हा? जो बदलता है ना उसको, ये अलग अलग मीनिंग में वो शब्द आते हैं। ये 33 नंबर का सूत्र आप कहेंगे, इन्हें कौन सी बनती है उसकी बात करेंगे। यानी कौन सी नहीं है वो ना 80 से कथन हुआ, अब कौन सी बंद रही है उसको 80 से कथन करेंगे। चदु संजलना पुरिस वेदो हस्सरदि अरदि सोग दोन्नम जुगलाणम एकदरम भयदुगुंचा एदास्यम नवन्नम पयडीनम एकम्मी चेवठाणम बंधमाणस। चारों संज्वलन कषाय पुरुष वेद हास्य रति और अरति शोक इन दोनों युगलों में से कोई एक युगल, भय और जुगुप्सा इन नौ प्रकृतियों के बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है। इस सूत्र का अर्थ सुगम है। यहां पर हास्यादि दोनों युगलों के विकल्प से दो भंग होते हैं, किसी को हास्य रति और किसी को शोक अरति, अरति शोक बंद होता है। ये दो विकल्प हुए, दो भंग हो गए। तम संजदस्य वह नव प्रकृतिक पंचम बंध स्थान संयत के होता है। अब संयत का अर्थ करेंगे। यहां संयत के ऐसा सामान्य पद कहने पर प्रमत्त संयत से लेकर अपूर्वकरण गुणस्थान तक के संयतों का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उससे ऊपर 6-9 कषायों का बंध नहीं होता है, क्योंकि वो हास्यरति भयजुगुप्से के बंध की विच्छित्ति 8वें के अंत में होती है, नहीं 8वें में होती है, उसके ऊपर उसका बंध नहीं होता। इसलिए वहां पर नव प्रकृतिक रूप बंध स्थान का होना संभव नहीं है। एक बात ये भी है, ये जो यहाँ हमने भंग देखे थे ना, हास्यरति या शोकरति, अब ये जो नव प्रकृतिक है ना, कौन कौन सी है? संज्वलन है, पुरुष वेद है, पांच हो गए, हास्यरति या शोकरति और भय जुगुप्सा। तो छठे में तो दो विकल्प हो गए, हास्यरति या शोकरति। छठे के बाद शोक और अरि के बंध नहीं होता, छठे तक ही उसका बंध हो सकता है। तो सातवें के लिए नव प्रकृति तो रहेगी, परंतु भंग कितने हो गए? अभी एक ही भंग होगा, सबको समान ही बंध होगा, उसमें कोई ऑप्शनल नहीं है, सातवें के लिए भी और आठवें के लिए भी। हास्यरति और भयजुगुप्सा बंधेगी उसमें, वहां शोक और अरति का बंध नहीं है। यहां लिखा नहीं है, मगर ये अपने समझने के लिए। अब 35वां सूत्र। तत्थ इमं पंचन्नम ठाणम हस्सरदि अरदि सोग भय दुगुंचम वज्ज। अभी पांच वाला स्थान है, किस किस को छोड़कर? हास्यरति, शोकरति वो युगल और भय जुगुप्सा, इसको छोड़कर तो रहे क्या? संज्वलन और पुरुष वेद। हाँ। देखो, मोहनीय कर्म संबंधी उक्त दश बंध स्थानों में पंचम स्थान की नौ प्रकृतियों में से हास्यरति, अरति शोक, भय और जुगुप्सा को छोड़कर यह पांच प्रकृतिक छठा बंध स्थान है। ये ऑप्शनल है, इसलिए वो छोड़ा तो भी उसकी संख्या दो घटी और भय दुगुप्सा की दो घटी, यानी चार कम हो गए। इन पूर्वोक्त पूदीर्घ चाहिए। इन पूर्वोक्त नौ प्रकृतियों में से इन हास्यादि चार प्रकृतियों को कम कर देने पर अवशेष पांच प्रकृतियां शेष रहती हैं। हास्यादि चार कहा, परंतु वो तो हमें जानने के लिए हास्यरति भय जुगुप्सा कहेंगे, परंतु शोक और अरति तो पहले ही निकल चुके, इसलिए यहां चार ही लिखा। यद्यपि प्रेक्षा पूर्वकारी अर्थात बुद्धि प्रधान शिष्यों के द्वारा अर्थापत्ति से शेष पांच प्रकृतियां जान ली गई है, क्या कहते हैं कि अनुमान से पहले लिखा था, अब यहां कहते हैं प्रेक्षा पूर्वकारी, ने प्रेक्षा ने बुद्धि की बात चल रही ना, बुद्धिमान शिष्य तो जान लेंगे कौन सी पांच रह गई है, जैसे आप सबने उत्तर दिया ना कौन सी पांच, फिर भी तो भी शब्द नया अनुसारी शिष्यों के अनुग्रह के लिए, देख कितने कितने नए निकाले इसमें, तो वो तो शब्दों में जानना चाहते हैं कौन से है वो बता दो, उनके लिए आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं। चदु संचलनम पुरिस वेदो एदास्यम पंचन्नम पैडीनम एकम्मी चेवठाणम बंधमाणस। क्रोध आदि चारों संज्वलन कषाय और पुरुष वेद इन पांचों प्रकृतियों के बंद करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है। अब ये जो नौवा गुण स्थान है उसमें ये अलग अलग वेरिएशंस हो गए। अभी तो पांच प्रकृतियों का बंद है, फिर कहेंगे चार प्रकृतियों का बंद है, फिर तीन प्रकृति का, फिर दो प्रकृति का, फिर एक प्रकृति का, और दसवें में मोहिनी का बंद नहीं है। उदय है वहां लोभ का, परंतु बंद नहीं है। तो ये जो यहां से आगे पांच चार तीन दो एक जो है वो सब नौवे गुण स्थान के ही भेद है। तो कहेंगे पांच प्रकृति का बंद वाला स्थान, चार वाला बंद स्थान, तीन वाला बंद स्थान, दो वाला और एक वाला, तो ये नौवे गुण स्थान के ही भेद कर दिए हमने। तो एक ही भाव में अवस्थान है, उस एक ही भाव में इस पद का अर्थ पांचों प्रकृति रूप संख्या में अथवा पांच प्रकृतियों के बंध योग्य परिणाम में ऐसा लेना चाहिए। शेष वो श का शे करना, शेष सूत्रार्थ वो दीर्घ सु चाहिए, सुगम का सु रहस्व चाहिए, शेष सूत्रार्थ सुगम है। अब अगला सूत्र, तम संजदस्य, वह पांच प्रकृतिक छठा बंध स्थान संयत के होता है। अब यहां संयत ने कौन लेना, नवे गुण स्थान लेना। हाँ, नवे का पहला भाग है, परंतु अभी तो हम नवा गुण स्थान कहेंगे यहां पर, क्योंकि संयत के सिवा करना, सिवाय सिवाय वो मराठी हो गए, क्योंकि संयत के सिवाय अन्यत्र इस पांच प्रकृतिक रूप बंध स्थान का अभाव है, उसका विशेषार्थ। यहां पर यद्यपि संयत सामान्य को ही इस बंध स्थान का स्वामी बतलाया गया है, तथापि उसका अभिप्राय अनिवृत्तिकरण संयत से ही है। लिखा तो संयत है, परंतु उसमें से यह नवे गुण स्थान की बात है, हमको समझना चाहिए। तथा यही बात आगे कहे जाने वाले चार तीन दो और एक प्रकृतिक रूप बंध स्थानों के स्वामित्व में भी जानना चाहिए। वहां भी संयत ऐसा ही लिखेंगे, तो वहां कहेंगे हम नवे गुण स्थान का दूसरा भाग, नवे गुण स्थान का तीसरा भाग, चौथा भाग, इस तरह से। अब 38 नंबर, तत्थ इमं चतुर्णम ठाणम पुरुष वेदम वज्ज। अब ये जो चार प्रकृति वाला स्थान है उसमें क्या होगा, ये पांच में से एक पुरुष वेद को हटाएगी तो ये चार प्रकृतियों का स्थान रह जाएगा, यानी संज्वलन क्रोध मान माया लोभ वाला रहेगा, क्योंकि अभी वेद का उदय है तब तक ही वेद का बंध है, अब उसका भी बंध मिट जाएगा। यहां मोहनीय कर्म संबंधी उक्त दश बंध स्थानों में छठे बंध स्थान की पांच प्रकृतियों में से पुरुष वेद को छोड़कर यह चार प्रकृतिक सातवां बंध स्थान होता है। पूर्व सूत्रोक्त पांच प्रकृतियों में से पुरुष वेद के घटा देने पर अवशेष चार प्रकृतियां रहती है। ये बोल्ड नको होता है, ठीक है। यद्यपि उन चारों प्रकृतियों के नाम अर्थापत्ति से प्रमाणानुसारी शिष्यों के द्वारा जान लिए गए हैं, अर्थापत्ति से प्रमाण यानी ये अर्थ के अनुसार उसका जो जान लिया ना उसने, उसका अनुसारी शिष्य ने वो जान लेते, उसके अनुमान कर लेते हैं, उनके द्वारा जाने लिए गए हैं। तथापि शब्दानुसारी शिष्यों के अनुग्रहार्थ, एक तो अर्थ से जान लिया और ये शब्द के द्वारा जानना चाहते हैं, शब्दों में जानना चाहते, कौन सी है वो बताओ, उसके लिए आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं, चतुसंजलनम एदासिम चतुर्णम पैडीनम एकम्मि चेवठानम बंधमानस्य, क्रोध संज्वलन, मान संज्वलन, माया संज्वलन और लोभ संज्वलन, इन चारों प्रकृतियों के बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है, उसको कहेंगे चार का बंध करने वाला स्थान। यह सूत्र सुगम है। अब 40 नंबर, तम संजदस्य, यहां तो खाली संयत इतना ही कहा है, क्योंकि मूल सूत्र जो लिया था बंध के स्थान कहाँ कहाँ होते तो संजद के होते ऐसा लिखा था, तो वहां तो संयत का अर्थ हमने 13वें तक का किया था, बंध कहाँ तक होता है, तो मिथ्या तो गुणस्थान से संयत इतना ही लिखा था उन्होंने, तो संयत में छठे से तेरहवे सब आए थे। तो संयत का जहाँ जो अर्थ है वहाँ हमको लेना चाहिए। यहाँ चार का बंद की बात चल रही है, वो कहाँ पर होती है? तो उन्होंने कह दिया संयत को होता है। तो संयत यानी यहाँ अकेला नौवा गुणस्थान लेना। वो चार प्रकृति सातवा बंद स्थान संयत के होता है। यह सूत्र भी सुगम है। अब 41 नंबर, तत्थ इमम तिन्नम ठाणम क्रोध संजलनम वज्ज। अभी क्रोध संजलन को छोड़कर जो रिमेनिंग तीन है, शेष तीन बचे ना, तो उसका ही बंद होगा। देखो यहाँ पर हमें मालूम है कि एक समय में एक का ही उदय होता है, या तो क्रोध होगा या मान या माया या लोग, परंतु बंद अभी तक चार का हो रहा था। अभी क्रोध का उदय काल मिट गया। अभी भले उदय लोभ का हो, मान का हो या माया का हो, परंतु बंद अब तीन का होगा। तो तीन का बंद स्थान कहलाएगा ये संज्वलन, मान माया और लोभ का बंद होगा। अब क्रोध का बंद इससे आगे नहीं होगा। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के ऐसे जो पार्ट बताए ना, पहले तो संज्वलन चार और पुरुष वेद का बंद होता था, अब संज्वलन चार का बंद होने लगा, फिर संज्वलन तीन का ही बंद होगा। हाँ, एक ही गुणस्थान के पांच भेद है, भाग है अलग अलग। इतना काल जाने के बाद, इतना काल जाने के बाद उतना उतने प्रकृतियों का बंद रुक जाता है। यानी इसके बाद क्रोध का उदय नहीं हो सकता, हो सकता ही नहीं है। तीन में से एक का उदय होगा तो पहले तो उसको पहले में क्रोध वेदक काल कहते हैं, परंतु उस काल में क्रोध मान माया लोभ किसी में से उदय हो सकता है। चार में से किसी एक का उदय होगा, बंद चार का होगा। उसके बाद तीन में से एक का उदय होगा। अभी क्रोध का उदय भी नहीं है और बंद भी नहीं है। तीन में से एक का उदय यानी बंद तीन का, ऐसा यहाँ जो भाव लिखा है वो तीन का बंद करने वाला भाव, दो का बंद करने वाला भाव, ऐसा लेना यहाँ इस भाव की अपेक्षा। देखो मोहनीय कर्म की कर्म संबंधी उक्त दस बंध स्थानों में सप्तम बंध स्थान की चार प्रकृतियों में से क्रोध संज्वलन को छोड़कर यह तीन प्रकृति आठवा बंध स्थान होता है। चारों संज्वलन प्रकृतियों में से क्रोध संज्वलन के घटा देने पर अवशेष तीन प्रकृतियां रह जाती है, शेष सूत्रार्थ सुगम है। यानी मान माया लोभ का यह बंद होता है। अब 42 नंबर, मान संजलनम माया संजलनम लोभ संजलनम एदासिम तिन्नम पैडीनम एकम मि चेवट ठाणम बंधमानस। मान संज्वलन, माया संज्वलन और लोभ संज्वलन इन तीनों प्रकृतियों के बंद करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान होता है, यह सूत्र सुगम है। कौन सा भाव? वो तीन का बंद करने वाला भाव, ऐसा लेना। तम संजदस्य, अब यहाँ भी लिखा खाली संयत है, परंतु ये नवे गुण स्थान का अभी पहला दूसरा तीसरा भाग, ऐसा समझना। वह तीन प्रकृतिक अष्टम बंध स्थान संयत के होता है, यह सूत्र भी सुगम है। तत्थ इमम दोन्नम ठाणम मान संजलनम वज्ज। अब इसके बाद मान को छोड़कर दो का बंद स्थान रहेगा। मोहनीय कर्म संबंधी उक्त दस बंद स्थानों में अष्टम बंद स्थान की तीन प्रकृतियों में से मान संजलन को छोड़कर यह दो प्रकृतिक नौवा बंद स्थान होता है। अभी उसका कुछ लिखना भी उन्होंने कुछ नहीं समझा, क्योंकि वो तो सरल है ना, अर्थ भी सरल है इसका। अगला सूत्र, तम संजदस्य, ये रह गया 45 नंबर, 45 पढ़ना रह गया, फिर पढ़ती हूँ। माया संजलम लोभ संजलनम एदासिम दोन्नम पैडीनम एकम मि चेव ठाणम बंधमानस्य। कि माया संज्वलन और लोभ संज्वलन इन दोनों प्रकृतियों के बंद करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है। अगला सूत्र, तम संयदस्य, वह दो प्रकृति रूप नवम बंध स्थान संयत के होता है। अभी हमको मालूम है नवे गुण स्थान की ही बात अभी चल रही है। मोनिय का बंधन नवे में ही होता है, नवे तक ही होता है। दसवें वाले को सूक्ष्म लोभ का उदय तो है, बंध नहीं होता। 46 पढ़ा, अभी 47। तथ्य इमम 21 से ठाणम माया संजलनम वच्च, यानी एक वाला जो स्थान है माया को छोड़कर एक वाला, यानी अभी लोभ वाला रह गया। अभी तक दो का था, अब उसमें से माया का भी बंद हो गया, यानी रुक गया, तभी लोभ का बंद होने लगेगा, अकेले लोभ का। मोहनीय कर्म संबंधी उक्त दश बंध स्थानों में, वो ध बराबर दिखता ही नहीं उनका, बंध स्थानों में नवम बंध स्थान की दो प्रकृतियों में से माया संज्वलन को, उस के ऊपर बिंदी लगाना, माया संज्वलन को छोड़कर यह एक प्रकृतिक दसवां बंध स्थान होता है। इसका भी अर्थ सुबह में है ना, 47 हो गया ऊपर, तत्ते में 21 से ठान, अभी 48 पढ़ेंगे ऊपर। लोभ संजलम 21 से 21 से पैडी ये एकम्मी चेवट ठानम बंधमानस, लोभ संज्वलन इस एक प्रकृति के बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है। तम संजदस्य, वह एक प्रकृतिक दशवा बंध स्थान संयत के होता है। यह कौन सा संयत है? नवे का अंतिम भाग है, अभी लोभ का यहाँ बंध है अकेला। ये सब सूत्र सुगम है। तो मोहनीय के कितने कितने बंध स्थान देखे, बंध स्थान कितने देखे हम? मोहनीय के बंध स्थान कितने देखे? 10 देखे। कौन से 10? कोई 23 कहाँ हो? 23 गिनाओ आप। देखो 22 वाला, हाँ 22, 22 कहाँ है? पहले गुणस्थान में। 21 वाला दूसरे गुणस्थान में। तीसरा बंधस्थान, हाँ 17 वाला जो है वो तीसरे और चौथे गुणस्थान में है। उसके बाद 13 वाला कहाँ पर है? पांचवे गुणस्थान में है। और फिर 9वां जो है वो कहाँ पर है? हाँ छठे सातवें और आठवें में कितना है? 9 वाला है। देखो देखो, 17 वाला तीसरे चौथा में है, फिर 13 वाला पांचवे में है, और फिर 9 वाला 6, 7, 8 में है, बरोबर। अब 5 का कौन से 4 कम हुए बोलो भाई? हाँ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा,
जो कुछ है,
यानी वो तो हुए तो 4 ही कम, परंतु वो तो हम उसमें ले लेते हैं। हाँ तो कौन से रह गए अभी? 5 रह गए। 9वें गुणस्थान के प्रथम भाग में 5 का बंध है। कौन से 5 है? संज्वलन 4 और एक पुरुषवेद। फिर दूसरे भाग में पुरुषवेद चला जाएगा, 4 का बंध है। फिर एक एक कम होगा, क्रोध, फिर मान, फिर माया, फिर लोभ। तो रहेगा कौन सा स्थान रहेगा? हाँ तो हम वो बंध स्थान गिना रहे ना, तो लोभ नहीं गिनाना, लोभ का बंध है ना। हम किसको किसको छोड़ना उसकी बात चल रही है। लोभ के भी छोड़ देंगे तो मोहनी का बंध स्थान ही नहीं रहेगा। तो 5 वाला स्थान, 4 वाला स्थान, 3 वाला स्थान, 2 वाला स्थान और 1 वाला स्थान, ये 5, 4, 3, 2, 1 वो तो 9वें गुण स्थान में ही है। 1 वाला स्थान, ये सब जो है वो मोहनी के बंध स्थान है। आसान है ना? तो करना नियोग नहीं समझता कहते सब। हाँ मंदबुद्धि, हम थोड़े ही मंदबुद्धि वाले। देखो अब हम आगे पढ़ेंगे, अभी है 5 मिनट ऊपर जो अभी 50 नंबर का सूत्र आउअस कम्मस चत्तारी पैडियो। आयु कर्म की 4 प्रकृतियां होती है। यह सूत्र संग्रहने वाले जीवों का अनुग्रहकारी सूत्र है, क्योंकि आगे कहे जाने वाले समस्त अर्थ को अवगाहन करके अर्थात अपने अंतर्गत करके अवस्थित है। क्या कहते हैं संग्रह सूत्र का अर्थ हमने देखा था, इकट्ठा करना उसको कहते हैं संग्रह, और फिर उसमें विभाजन करना उसको हम कहेंगे व्यवहार ने। ये संग्रह ने से आगे जो भेद है ना 4 भेद उनको इसमें अंतर्गत किया, उसमें इंक्लूड कर दिया इसमें। तो एक ही बंधेगा परंतु उसमें फिर वो अलग अलग आयु कर्म की अपेक्षा बताएंगे। अब नरकायु का बंधसान एक तो बंधेगी परंतु कौन सी बंधेगी, तो नरकायु कहाँ बंधेगी, तो अकेले पहले में ही। तो नरकायु में बंधस्थान ऐसा अलग निकालें, आयु तो एक ही बनती है। अब तिर्यंचायु कहाँ कहाँ बंधेगी, पहला और दूसरा दोनों है ना। तो ये तिर्यंचायु का बंधस्थान कौन कौन सा है, वो है तो एक ही, तो पहला और दूसरा गुणस्थान होगा। और मनुष्यायु कहाँ बंधेगी,
चौथे गुणस्थान,
एक दो और तीन चार तीन में नहीं बनती, तीन में आयु का बंधन नहीं होता, तो पहला दूसरा और चौथा ऐसा कहेंगे हम, ख्याल है। और देवायु कहाँ कहाँ बंधेगी, हाँ सातवें तक, संयत तक, तो पहले से लेकर तीसरे को छोड़ देना बीच में। तो यहाँ ऐसा विभाजन करेंगे आगे, क्योंकि बंध का तो एक ही स्थान है, एक ही बनती है, पर कौन सी बनती है उसमें डिफरेंस है ना। या नरकायु कहाँ कहाँ बनती है उसकी बात करेंगे। देखो इसलिए इसमें चारों ही अंतर्गत है, इसलिए इसको संग्रह नय का सूत्र कहा। अब आगे 51 नंबर, निराआउम तिरिखाउम मनुष्यआउम देवाउम चेदि। ये 4 आयु कौन है उसकी, ये संख्या ये नाम बताए। नरकायु तिर्यगायु मनुष्यायु और देवायु, ये आयु कर्म की 4 प्रकृतियां हैं। यह सूत्र निरर्थक नहीं है, क्योंकि वह विस्मरणशील शिष्यों के स्मरणार्थ बनाया गया है। 52 नंबर, जम तम निरायु कम्मम बंधमानस्य। आयु कर्म की 4 प्रकृतियों में जो नरकायु कर्म है उसके बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है। अब यहाँ संख्या को नहीं लिया है, नरकायु तिर्यंचायु ऐसा भेद लिया उसमें, अन्यत्र कितने प्रकृतियां बनती है उसकी अपेक्षा से भेद किया था। यहाँ नरकायु का बंध करने वाला तिर्यगायु का बंध करने वाला इस तरह से भेद किया है। इस सूत्र में एक में ही अवस्थान होता है, इस वाक्य का अध्याहार करना चाहिए, अध्याहार ने ये उसमें समझ लेना चाहिए। अन्यथा इस सूत्र के निष्क्रियता की आपत्ति प्राप्त होती है। शंका, नरकायु के बंध करने वाले जीव का कहां पर अवस्थान होता है, वो जीव का रहना कहां है, तो ये भाव में कहेंगे या संख्या में कहेंगे, एक संख्या में, अथवा नरकायु के बंध योग्य परिणाम में उसका अवस्थान होता है। वो कहां उसका स्थिति है, उसकी स्थिति तो वो बंध योग्य परिणाम में या उस एक संख्या में। यहां पर वेदनीय कर्म के समान एक में ही अवस्थान होता है, इतना वाक्य आचार्य ने सूत्र में किस लिए नहीं कहा, अकेली संख्या क्यों नहीं लिया, वो भाव को भी क्यों लिया है। वेदनीय में या साता या असाता था तो संख्या में लिखा था, तो उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि संख्या की अपेक्षा चारों आयु कर्म की प्रकृतियों का एक में ही अवस्थान होता है, वो तो बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही आयु कर्म बनता है, तो एक तो संख्या निश्चित है ही है, परंतु यहाँ डिफरेंस कहाँ है, भावों में। किंतु परिणाम की अपेक्षा आयु कर्म के 4 स्थान होते हैं, अन्य कर्मों में और आयु कर्म में ये डिफरेंस है, परिणामों की अपेक्षा ये 4 अलग अलग स्थान बताएंगे। नरकायु का बंध स्थान अलग, तिर्यगायु का बंध स्थान अलग, मनुष्यायु का और देवायु का। यह बतलाने के लिए सूत्र में उक्त प्रकार का वाक्य आचार्य ने नहीं कहा। बाकी बात हम कल पढ़ेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो।